नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आर्थिक सुधार और कर चोरी को रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण जुलाई में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है। इससे पहले अप्रैल 2022 में संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मंत्रालय ने कहा कि ये छठा मौका है और मार्च 2022 से लगातार पांचवां महीना है जब मासिक जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। समीक्षाधीन अवधि में वस्तुओं के आयात से राजस्व में 48% की बढ़ोतरी हुई। घरेलू लेन देन से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 22% अधिक था। भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी सोमवार को खत्म हो गई। 7 दिन तक चली इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5G दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इस नीलामी में अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि अंतिम आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,50,173 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। अत्यधिक उच्च गति के मोबाइल इंटरनेट संपर्क की पेशकश करने में सक्षम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की ये राशि पिछले साल बेचे गए 77,815 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम से लगभग दोगुना है। ये राशि 2010 में 3G नीलामी से मिले 50,968.37 करोड़ रुपए के मुकाबले 3 गुना है। रिलायंस जियो ने 4G की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तेज गति से संपर्क की पेशकश करने वाले रेडियो तरंगों के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। इसके बाद भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्थान रहा। वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि जुलाई में उसकी घरेलू यात्री वाहनों की कुल बिक्री सालाना आधार पर 33% बढ़कर 28,053 इकाई हो गई। M&M ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में कहा कि कंपनी ने एक साल पहले के इसी महीने में 21,046 इकाइयां बेची थी। समीक्षाधीन अवधि में घरेलू उपयोगिता वाहनों की बिक्री 34% बढ़कर 27,854 इकाई रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 20,797 इकाई थी। M&M ने कहा कि जुलाई 2022 के दौरान कारों और वैन की बिक्री 20% घटकर 199 इकाई रह गई। जुलाई 2021 में इनकी 249 इकाइयां बिकी थी। M&M के मोटर वाहन विभाग के अध्यक्ष विजय नाकरा ने कहा कि कंपनी ने XUV 700, थार, बोलेरो और XUV 300 समेत अपने ब्रांडों में मजबूत मांग देखी है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति गतिशील बनी हुई है और हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। ICICI बैंक ने सोमवार को कर्ज पर लगने वाली ब्याज दर 0.15% बढ़ा दी। भारतीय रिजर्व बैंक के इस सप्ताह नीतिगत दर में बढ़ोतरी की संभावना के साथ बैंक ने ये वृद्धि सभी अवधि के कर्ज पर की है। निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर बढ़ाई है। बैंक के इस कदम से कर्ज की मासिक किस्त बढ़ेगी। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अगस्त से संशोधित दरों के तहत एक साल की अवधि वाली MCLR 0.15% बढ़ाकर 7.90% कर दी गई है। वहीं एक दिन की अवधि की ब्याज दर 7.65% होगी। खुदरा ऋण के लिहाज से एक साल के MCLR को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आवास ऋण जैसे बैंक के दीर्घकालीन कर्ज इसी से संबद्ध होते हैं। बैंक ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की इस सप्ताह होने वाली बैठक से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसी संभावना है कि MPC मुद्रा स्फीति पर अंकुश के लिए नीतिगत दर रैपो में बढ़ोतरी करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंफोसिस ने सोमवार को सिडनी लिविंग लैब खोलने की घोषणा की। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट के बेंगलुरु में इंफोसिस मुख्यालय की यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई थी। इंफोसिस ने एक बयान में कहा कि प्रीमियर ने 81 एकड़ के विशाल इंफोसिस बेंगलुरु कैंपस का दौरा किया और इंफोसिस बेंगलुरु लिविंग लैब में डिजिटल अनुभवों को महसूस किया। ये मेलबर्न समेत विश्व स्तर पर स्थापित 20 से अधिक के नेटवर्क का हिस्सा होगा। बयान में कहा गया है कि 2030 वर्ग मीटर में फैला ये NSW लिविंग लैब इंफोसिस के नए सिडनी कार्यालय में 160 वर्ग मीटर का सह निर्माण स्थान है। बयान के मुताबिक ये ग्राहकों, भागीदारों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और सरकार सहित इंफोसिस के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ेगा ताकि अभिनव डिजिटल समाधानों को प्रेरित और पोषित किया जा सके। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में मांग बढ़ने से संपत्तियों का पंजीकरण जुलाई के महीने में 15% बढ़कर 11,339 इकाई हो गया। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पिछले एक दशक में जुलाई के दौरान संपत्तियों के पंजीकरण का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। जुलाई महीने का ये आंकड़ा 30 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक का है। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में हुए कुल पंजीकरण में से 86% आवासीय इकाइयों के थे, जबकि 10% पंजीकरण वाणिज्यिक संपत्तियों का हुआ। इन संपत्तियों के पंजीकरण से सरकार को शुल्क के रूप में 829 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। नाइट फ्रैंक ने कहा, मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव के बीच रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कुल 0.90% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे घर खरीदारों के लिए किफ़ायती आवास की सीमा बढ़ गई है। इसके बावजूद जुलाई में मांग बनी रहने से संपत्तियों का पंजीकरण अधिक रहा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।